ओम शांति। सुनचान करो।
ओम शांति। मुरली रिवाइज की सिलसिला में सभी के आपने हमने रूटीन अनुसार आज मेरा मुरली का रिवाइज का टर्न की 6-7-69 की मुरली टीचरों की प्रतिभा उदाहरणी क्या शिक्षाएं दिए हैं सब इसे तो मुरली लंबी है लेकिन उसको छोटी करने का काम होती है यहाँ पर। तो बाबा ने मुरली के शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देखा जाए तो बाबा ने जैसे कि संग्रहालय समझाने की तरीके संग्रहालय को कैसे समझाना है सेकंड पैराग्राफ अगर देखा जाए तो ठिकाना देने वाला और ठिकाना क्या है तीसरा पैराग्राफ अगर देखा जाए तो उस बाबा ने बोले सच्चाई और सफाई तो चौथा पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं तो बाबा जिस दुनिया की स्थापना करते हैं तो उसके हम सिरमौर हैं आंखों के सितारे हैं तो उसी चैप्टर में आता है कि धर्म तरत पर धर्म न छोड़िए तो इस तरीके से छठा चैप्टर में अगर हम देखते हैं तो बाबा कि बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देते हैं और कैसे वस्त्र होने चाहिए जेवर कैसे पहनना चाहिए उसके बाद बाबा ने संजय सैनी टीचरों के लिए दिया है और लास्ट में चैप्टर के अंत में लट्टी के बारे में भी खूब बाबा ने एग्जाम्पल दिए हैं तो इस तरीके से पारही बन करके जेवर को कैसे परखना है कैसे लंबी चैप्टर माना 6-7 पैराग्राफ है इसके तो अगर मुरली को हमने इस रूप से स्टडी की है उसमें बाबा ने शुरू में क्वेश्चन किया है कि किसके याद में थे दो के याद में थे या तो एक ही याद में थे व्यक्त के याद में थे या तो अव्यक्त के याद में थे शुरू में बाबा ने टीचरों के प्रति इस तरीके से क्वेश्चन किया है तो उसमें खास बाबा ने बोला कि संगम को बाबा ने बोला कि इस बीज बोने का युग है तो बीज बोते समय तो बाबा ने ये बोला कि जो ठिकाना देने वाला है तो शिव बाबा ही है और ठिकाना हमारा संगम युग है इसमें बाबा आकर के हम सबको अपना परिचय बाप का परिचय सब कुछ दिया है तो ये ठिकाने देने वाले बाप और ठिकाने को अगर भूल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे इस तरीके से बाबा ने बोला। अगर प्रदर्शनी में तुम सीधा ही अगर तो बतन कर तुम एड्रेस दे दोगे तो उसने कभी देखा भी नहीं तो कभी जाना भी नहीं है तो कैसे वहां पर पहुंच जाएगा इसीलिए जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो जैसे कि इतने अच्छी रीति से उनकी टीच करते हैं सिखाते हैं तो फिर वो टीचर का फॉलो करता है वो तो एग्जाम्पल बन के दिखा देता है वो अगर हमने इतने परवरिश लेने के बाद में भी इस तरीके से अगर हमने पालना नहीं दिया तो टीचर का फॉलो नहीं कर सकता है वो इसीलिए बाबा ने बोला टीचर को जो फॉलो करने के योग्य बनाओगे तो फिर आपको भी शो करेगा वो तो पर संग्रहालय में कैसे समझाना है तो बाबा ने बोला बीज पड़ जाता है तो बारिश में वो बीज फलीभूत होता ही है इसलिए बीज तो डालते हैं लेकिन बाबा ने बोला कि अभी यह संगमयुग का जो महत्व बाबा ने बताया कि संगमयुग में जो भी चीज होती है कि बाबा ने बोला पूरा संगमयुग की बलिहारी है तुम्हारे लिए। तो ये बलिहारी इसलिए है कि बाप भी यहाँ करके संपूर्ण बने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाए हैं, अव्यक्त बतन भाषी बने हैं, तो तुमको तपस्या कहाँ करना है पुरुषार्थ। तो किसी ने बोला होगा कि इसी सृष्टि पर बैठ के हम करेंगे। तो फिर बाबा ने बोला सृष्टि तो गोल है, पूरा का पूरा गोल है। तो इसमें बाबा ने इतना अच्छी पॉइंट निकाले, संगमयुग की बलियारी है। तो इसकी बलियारी में आपको ये भूलना नहीं चाहिए, तो जो बीज देने वाला, जो ज्ञान देने वाला समय ही ये संगमयुग है। तो बाप को नहीं भूलना है, बाप की शिक्षा को अगर तुम धारण करोगे तो आपके पास दो गुण आएंगे, जिसको धैर्यता गुण और अंतर्मुखता का गुण बोला बाबा ने। तो ये गुण अगर आपके पास में आएंगे तो रामर राज्य को तुम खलास करोगे, रामर राज्य को खलास करोगे। तो इसीलिए बाबा ने इसमें ये भी बोला कि अगर अच्छी रीति से अगर इस ज्ञान को आपने धारण किया तो फिर आपको तीर लगाने में सहज हो जाएगा, तीर लग जाएगा। तो आपको तीर में जोर होगा तो आप एक ही बार में तीर लगा सकेंगे, तीर लगाएंगे तो इसका भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो बाबा ने बोला कि कल्याण करने का युग है, उद्धार करने का। तो इस रूप से बाबा ने धीरे से आगे बढ़ाए हैं। तो बाबा ने आगे जाकर के बोला कि सच्चाई और सफाई क्या चीज है। सच्चाई और सफाई के बारे में बोलने के लिए काम बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई और सफाई के गहराई में जाकर के जिन्हों को बाबा ने जो डायरेक्शन दिए थे कि आपने जन्म पत्री लिख करके देने के लिए, तो बाबा ने बोला जन्म पत्री लिखने के लिए किन्होंने तो लज्जा के मारे लिखा नहीं, किसी ने भय के मारे से नहीं लिखा है, तो किसी का बाप दादा से बात भी हुई थी। बाबा ने बोला सबको लिखना है, क्योंकि 84 जन्म की हिसाब किताब तो यही चुपता होनी है। इसीलिए जो लिख के देते हैं तो जवाबदारी तो बाप का बन जाता है, उसके बाद में हमारा वो संकल्प चलने का जो मार्जिन खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा ने इस तरीके से सबको डायरेक्शन दिया कि बाद में बार बार हमारे संकल्प उधर वेस्ट न जाए। इसीलिए बाबा ने बोला कि मैं बच्चों को सेवा करने के लिए वतन से आया हूँ, तो सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। बाबा तो आदि से अंत तक कि बच्चों का सेवक बनेगा, तो सेवक बनेगा तो बाबा बनेगा, लेकिन बाबा ने हम सबको बोला है कि बनोगे क्या बोलते हैं, सबको अगर हाथ उठाने के लिए बोलते हैं तो क्या बनेंगे, सभी नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे। तो बाबा ने इसमें बोला कि इतने बड़ा लक्ष्य पकड़ा हुआ है तो गफलत कैसे हो सकता है। तो गफलत अगर हम करेंगे तो फिर हम कंफ्यूज तो होंगे ही। उसमें बाबा ने बोला कि अगर बाप का परिचय नहीं, अपने प्रति भेद नहीं है, तो फिर हम उस प्रकार से जो हम जिस प्रकार से हमारे अंदर में अलंकार आने चाहिए, जो शक्ति आने चाहिए, उस शक्ति नहीं आएगा हमारे पास। इसीलिए बाबा ने बोला कि तुम बच्चों को साफ करने के लिए मैं आया हूँ। तो साफ करने के लिए बाबा ने बोला कि जिस रूप से अगर हम आगे बढ़ने चाहते हैं, तो उसमें ये भी बाबा ने बोला कि सोने कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी ने बोला होगा 9-12, तो बाबा ने बोला कितने कैरेट के सोने होते हैं। तो अभी तुम्हारे पुरुषार्थ से एक कैरेट शब्द निकल जाना चाहिए, तो अगर ये निकल जाता है तो फिर आगे आपको ये चीज मिलेंगे। तो उसमें बाबा ने बोला जो टाइम बचा हुआ है अपने को करेक्ट करने का, करेक्शन करने का, तो करेक्ट और कनेक्ट जो करेक्ट करेंगे करेक्शन, तो हमें आगे क्या होगा कि बाबा ने हमारी जो सच्चाई सफाई जैसे बढ़ती जाएगी, तो उसमें बाबा ने धर्म के बारे में खास फोकस किया, धर्म तो पढ़िए धर्म न छोड़िए। तो ये दुनिया में तो कहते रहते हैं लेकिन करते हुए ये जो बोलते हैं प्रैक्टिकल में उनका नहीं होता है। तो बाबा ने बोला कि बाप दादा से वादा किया है, तो बाप दादा से जब वादा किया है तो फिर उस बाप दादा के हाथ में हाथ देने के बाद में तो इस प्रकार से फिर हमको पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। तो हाथ दिया और बाबा ने ये भी बताया कि तुम सच्ची सच्ची सीताएं हो, सच्ची लक्ष्मी हो, जाके महालक्ष्मी बनने वाली। तो ये सब चीजें आपके पास में आगे के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय हमारा फिर बीच में और पीछे मुड़ के देख सके, देखने के लिए हमारे मार्जिन मिले। तो इस तरीके से बाबा ने इसमें धर्म के बारे में पतिव्रत नारी का भी बाबा ने याद किया कि पतिव्रत नारी धर्म में इतना पक्के होती है तो तुम बच्चों को भी इस तरीके से अपने को इतना कच्चा नहीं समझना। हाथ में हाथ दिया माना क्या है, हम वचन में पक्के हो जाते हैं, धर्म जाए लेकिन वचन न जाए। तो इस तरीके से बाबा ने हम सबको वहां से यहाँ तक पहुँचाए। तो एक उसके बाद में जो पैराग्राफ शुरू होता है कि बाबा ने बोला कि यहाँ तो अभी सबको बाबा ने जो कि अटेंशन फाउंडेशन तो पड़ गया है, तो फाउंडेशन पढ़ने के बाद में बाबा सबको टीकाकरण करते हैं, टीका लगाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को टीकाकरण किया जाता है, आगे जाकर के कई प्रकार की बीमारियां न आ जाए तो क्या करना है, क्या बनना है, इस तरीके से बाबा ने इसमें स्पष्टीकरण दिया। तो आगे बाबा ने ये भी बताया कि सबको अव्यक्त तो मानव स्थिति को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जैसे कि पढ़ाई भी साथ साथ में होगा तो इम्तिहान भी साथ साथ में चलेगा। तो उसके बाद में बाबा ने बोला पढ़ाई तो साथ में चलनी है, तो तुम बच्चों को तो यहाँ जैसे कि रास्ता दिखाने के लिए बुलाया है, अब सबको रास्ता तो मिल गया है ना, इस तरीके से बाबा ने पूछा। तो रास्ता दिखाने के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए बाबा ने यहाँ पर बुलाए। तो बाबा फिर इसके पीछे कहते हैं कि जैसे हमने जिस बात को अपनाया है उसी रूप से तुम बच्चों को भी करना तो पड़ेगा। तो इसमें बाबा ने बोला कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सारी बातें आएंगे। तो जिस बात को लिए बाबा ने बोला कि तुम जैसे पावरफुल हो जाओगी तो तुमको ये सब बातें करना पड़ेगा। बच्चों को जैसे कि यहाँ से कहीं जाना होता है तो फंक्शन में जाना होता है, तो बाबा ने याद किया कि तुम बच्चे को कहीं ले जाना होता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो बच्चे खुश किस लिए होते हैं कि वस्त्र पहनने को मिलता है और श्रृंगार होती है तो उसमें बच्चे खुश होते हैं। तो बाबा ने बोला कि बच्चों को कौन सी वस्त्र पहनना है, कौन सा श्रृंगार करना है। तो बस जैसे श्रृंगार के लिए बाबा ने फिर आगे तो बहुत कुछ बोला कि तुम बच्चों को श्रृंगार कैसे होने चाहिए, तुम बच्चों को ड्रेस कैसे पहनना चाहिए, तुम बच्चों को ड्रेस ऐसा पहनना चाहिए कि दुनिया को दिखावा के लिए नहीं होने चाहिए, तुम्हारा जेवर ऐसा होने चाहिए जो अपने शोभा के लिए नहीं होने चाहिए। उसमें बाबा ने बोला लोक पसंद और सो पसंद होना चाहिए। लोक पसंद में बाबा ने बोला कि भाषण करने के लिए भाषण के किसी को खुश कर दिया लेकिन अंतर्मुख होकर के आपने को सजाना है। तो ऐसे जो वस्त्र पहना है कि जो किसी का भी, उसने तो बोला नहीं लेकिन संकल्प किसी का न चले। तो उसमें बाबा ने बोला जो भाषण करते हो, भाषा का जो तंत्र सार रहस्य बाबा ने बताया वो एक एक कर्म इंद्रियों में बस जाना चाहिए, तो फिर तुमको जो श्रृंगार बाबा करने के लिए आए हैं तो श्रृंगार करने के लिए बाबा ने बुलाए हैं, तो कर्म इंद्रियों के एक एक कर्म इंद्रियों को बाबा नहीं देखते हैं, एक एक कदम को नहीं देखते हैं। जैसे उसमें ससुर घर को भी याद किया बाबा ने, ससुर घर में कोई कन्या जाती है तो सास ससुर क्या कहती है, क्या कहते हैं कि जैसे कि अकलमंद है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जैसे इसके तो उठने बैठने बोलने चलने का भी अकल नहीं। तो ऐसे तुम बच्चों को भी बाबा ने बोला कि ऐसा नहीं होने चाहिए। अगर बाबा ने बोला कि ये संगम भी पार करके घर जाना है फिर ससुर घर में आना है तो तुम्हारे पास में सारी चीजें कितनी होनी चाहिए, रॉयल्टी, सभ्यता, शिष्टता। तो अभी से अगर हर कर्म इंद्रियों को तुम सजाओगे तो फिर वहाँ भी आपको इस प्रकार से अपना दुनिया में आने में जो चीज मिलेगा, पद पोजीशन मिलेंगे, उस तरीके से बाबा ने बताया। तो उसके बाद बाबा ने बोला कि एक टीचर सैनी है, समझदार है, तो फिर ऐसी टीचर अगर तैयार हो जाएगी तो फिर वो टीचर जब अपने सेंटर में जाएगी तो जिसको सृष्टि देगी, दृष्टि देगी, दृष्टि से नया सृष्टि दिखाई देगा। तो ऐसी टीचर तैयार करने के लिए बाबा ने बोला इतनी ट्रेनिंग लिया है, 15 दिन का टाइम, 15 दिन का जो टाइम मिला है जो अंत का टाइम है, अंतिम है, इसके बाद तुम परमानेंट टीचर बन जाओगी तो फिर सेंटर में जाके दूसरों को भी ठिकाना दे सकोगी। तो इसके बाद में बाबा ने आगे भी बहुत कुछ बोला, जैसे कि कपड़े जो हमारी जो सजावट होती है, सजावट, इसलिए आगे बाबा ने भी बोला था कि टीका तो बाबा ने सबको एक ही बार में लगा ही दिया है तो उसके बाद में फिर बाबा ने बोला कि जो लाल टीका होता है तो सूरत की शोभा होता है, शोभा होती है, तो फिर जो चंदन बाबा ने बोला आत्मा की शोभा है। तो इस तरीके से पूरा सजाते हुए बाबा ने ज्ञान ऊपर से नीचे तक अगर देखा जाए, वहाँ पढ़ाई शुरू किया, कैसे पढ़ाना बढ़ाना, उसके बाद में कैसे शिक्षा देना अपने को, कैसे सजाना, कैसे श्रृंगार करना, कैसे जेवर पहनना, इस तरीके से। फिर लास्ट में बाबा ने बोला कि तुमको कभी नट श्रृंगार उतारना है, न कभी हटाना है, सदाई पहन के रखना है, क्योंकि तुम शिव शक्तियां हो, शक्तियों को अपना भुजाएं तैयार करो, नहीं तो रावण राज्य को जीत प्राप्त करने के लिए अथवा दुश्मन को जीत प्राप्त करने के लिए अगर हमारे भुजाएं तैयार नहीं होंगे तो हम फिर जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे, संगठन की शक्ति जैसे जो भी बाबा ने बोला। इसके बाद में आगे बाबा ने बोला कि जैसे आप अपने को सिंगारेंगे तो सिंगारने के बाद में ये तो नहीं कहोगे कि सेंटर में जाने के बाद कि ज्ञान बहुत कठिन है, ऊंचा ज्ञान है बोल के अगर आप बोल दोगे तो कोई भी नहीं आएगा सेंटर में, इसीलिए आपको बोलना 7 दिन में जीवन मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर लोग इतने सारे आएंगे, लोग लॉटरी लेंगे तो लोग लॉटरी लेने के लिए आएंगे और सब देखेंगे कि लॉटरी किसकी लगेगी और समझेंगे कि किसी को तो जैसे लॉटरी मिलती है तो कहते हैं ना नसीब, तो सभी देखेंगे, और किसी को तो बड़ी लॉटरी मिल जाती है, किसी को छोटी लॉटरी मिलती है। इसीलिए बाबा ने लॉटरी के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से स्मृति दिलाए। उसके बाद में लास्ट में बाबा ने बोला कि पारखी जो होगा वही ही रतन को परख सकता है, वैल्यू को, रतन की वैल्यू को समझ सकता है। अगर जिसने अपने को इस रूप से सजाए होंगे तो फिर बाबा ने बोला कि तुम गायिया हो, गाय, हाँ, तो जैसे कि गाय जैसे कि उगारती है जो ज्ञान गुण शक्तियों को जीवन में लाती लाने के लिए हम सबको, और तुम जैसे कि गोपियां हो, गोपियों को जो दिखाते हैं जो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, तो बाबा ने बोला ये भट्टी में आप सबको इस प्रकार से प्रैक्टिकल करना है। और यहाँ बाबा ने बोला कि जिसके पास में परखने की शक्ति होगी वो रतन का वैल्यू रख लेगा, और जिसके पास में नहीं होगा वो तो ऐसे गवा भी सकता है। इसलिए तुमको ऐसा करते करते और फिर आगे के लिए बोला कि सब कुछ हो जाने के बाद में तुम भी पतनवासी बन जाओगे। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक टैंकिंग फोकस कम पड़ गया होगा, फिर भी कोशिश किया है कि हमें सब कुछ आ जाए, इसीलिए नहीं इस, क्योंकि टाइम तो फिर डॉक्टर साहब को भी 5 पेज की मुरली है, इसीलिए मैं अपने को पूरा विराम लड़न चाहता हूँ, फिर आप आगे बढ़ेंगे।
ओम शांति। व्यक्त मुरलियों का प्रवाह समाप्त हुआ और अव्यक्त प्रवाह चालू हुआ। अव्यक्त गंगा की गंगोत्री 1969 से बहते बहते पहुंच गई है 2016 के छोर पर। इस प्रवाह में बाबा कह रहे हैं शिक्षा देने का पार्ट नहीं है, टीचर का पार्ट तभी समाप्त हो चुका है। 69 में टीचर का पार्ट समाप्त हो चुका है, तो अभी कौन सा पार्ट चल रहा है फिर?
मदद देना, मैं कनेक्शन रखना और मदद देना।
बाबा कहते हैं जैसे
करता।
स्कूल में पढ़ाई पूरी होती है, उसके बाद में प्रिपरेशन लीव होती है 2 मास 3 मास, तो वहाँ पर टीचर जो है वो पढ़ाते नहीं है, वो प्रिपरेशन लीव है, उसमें तो खाली देख रेख करते हैं, देखते हैं कौन कैसे पढ़ रहा है। उसकी मदद है, उसका कनेक्शन है, साथ नहीं है। तो पढ़ाई कब पूरी हो गई? 69 में पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अभी केवल रिवाइज कोर्स चल रहा है। कितना बड़ा रहस्य है ये, जिनका जन्म ही अव्यक्त प्रवाह में हुआ है उनके लिए पढ़ाई ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई पहले ही पूरी हो चुकी है, जन्म से पहले ही, जन्म ही लेट लिया। पढ़ाई कब की पूरी हो चुकी है, अब बाप आते हैं मिलने के लिए, अब बाप आते हैं बहलाने के लिए, अब बाप आते हैं अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने के लिए, अब बाप आते हैं साथ ले जाने के लिए, अब बाप आते हैं उड़ाने के लिए। शिक्षा देने नहीं आते, शिक्षा दे चुके। जो कुछ बोलना था, फाउंडेशन कोर्स पूरा हो गया, अभी रिवाइज कोर्स चालू है, अभी होमवर्क चालू है, अभी एग्जाम प्रिपरेशन लीव चालू है। इसमें सेल्फ स्टडी करनी होती है। बाबा देख रहे हैं कि कोई कोई तो बहुत अलौकिक पन से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोई समय सफल कर रहे हैं तो कोई समय गवा रहे हैं, कोई कोई बहुत उमंग उत्साह से पढ़ रहे हैं, कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई बहुत शक्ति से पढ़ रहे हैं। ये सारा उसको दिखाई दे रहा है ऊपर से। तो बाबा केवल देख रहे हैं, इस समय साक्षी होकर देख रहा है। कितनी अद्भुत बात है ये। और ये जो अव्यक्त प्रवाह है, अभी पार्ट किसका चल रहा है फिर? टीचर का पार्ट पूरा हुआ, शिक्षक का पार्ट समाप्त हुआ, अभी पार्ट किसका चल रहा है? गुरु का चल रहा है, सदगुरु का चल रहा है। किस लिए? साथ ले जाने के लिए। इसके लिए उसकी जो मुख्य शिक्षाएं है उसको फॉलो करना है। ये शब्द इंग्लिश का है फॉलो, इसका क्या अर्थ है हिंदी में?
अनुकरण।
3 अर्थ है हिंदी में। फॉलो बार बार आता है, फॉलो फादर करो, फॉलो फादर करो, फॉलो फादर करो। फॉलो अर्थात अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन। 3 अर्थ है, तीनों अलग अलग है थोड़े थोड़े। सबसे पहले अनुकरण करना, अनुकरण करना अर्थात कॉपी, जैसे किया वैसे के वैसे करना, इमिटेट करना, मिमिक करना, कॉपी करना, अनुकरण। दूसरा है अनुसरण और अनुगमन। अनुसरण अर्थात जो भी कर्म किए उस कर्म के अनुसार चलना, कदम पर कदम नहीं। कदम पर कदम अर्थात अनुगमन, गमन अर्थात जाना। एक है आगमन, एक है गमन। कल था ना वरदान में आगमन, आवाज से परे परे रहकर और फिर आवाज में आकर अगर किसी को समझाते हो तो वारिस बनाते हो, अगर केवल आवाज से समझाते हो तो प्रजा बनाते हो। तो आवाज में से जो प्रजा बनती है वो कोई भी आवाज अगर हो जाए तो उसे आवागमन में आ सकते, प्रभावित हो सकते हैं। परंतु जो आवाज से परे रहकर जो शिक्षाएं होती है, जो सिखाया जाता है, वो प्रभावित नहीं होते। तो फॉलो अर्थात अनुकरण करना, तीनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। अनुकरण अर्थात जैसे उसने किया वैसे करना, अनुगमन अर्थात नक्शे कदम पर शिव बाबा के बाबा जैसा बनना है, और अनुकरण जैसे कि वैसे कॉपी करना। तो ये तीन अर्थ है। तो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे तुम बाबा को किस रूप में याद करते हो? तीन रूप में याद करते हो, बाप, टीचर और सदगुरु। इसके लिए बाप भी बच्चों को तीन रूप में देखते हैं, बच्चे, स्टूडेंट, फॉलोअर। शब्द बाबा ने कभी नहीं कहा है, फॉलो करने वाले कहते हैं हमेशा। उधर जो धर्म वाले हैं उनके फॉलोअर्स, अनुयायी कहो या धर्मावलंबी कहो, इस तरह से शब्द उधर आते। बाबा कहते हैं फॉलो करने वाले। तो बच्चे तो सभी है, परंतु स्टूडेंट सभी नंबर वार, फॉलो करने वाले नंबर वार। फॉलो जिन्होंने किया है और जिनको अब करना है, दोनों आ गए उसमें। तो बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। तो ये जो मुरली है बहुत महत्वपूर्ण मुरली इसलिए है क्योंकि ये जो बात है कि टीचर का पार्ट पूरा हुआ है, क्योंकि 21 मुरलियां पूरी हो चुकी है, ये 20वीं मुरली है अव्यक्त की। इसके लिए बहुत सारे प्रश्न है बच्चों के मन में, भाषा क्यों बदली, तरीका क्यों बदला, दूसरे के तन में क्यों नहीं आ सकते, बाबा की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह कर रहे। जैसे तुम भाषण कर सकते हो तो क्या बाप नहीं आ सकते? बाबा को ऐसे प्रश्न पूछे है बच्चों ने। भाषा क्यों बदली, एक तरीका क्यों बदला, आवाज क्यों बदली, ध्यान में पहले नहीं जाते थे अब क्यों जाने लगे, उधर झटका नहीं था इधर झटका क्यों, अभी तो अनप्रिडिक्टेबल है, अभी ध्यान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आवाज बदल भी सकती है नहीं भी बदल सकती है, अभी बहुत कुछ है। पर हम अभी का नहीं लेंगे क्योंकि ये मुरली चल रही है 69 में, तब तो किसी ने सोचा भी नहीं होता, बाबा ने यहाँ कहा ना ये रिवाइज कोर्स कब तक चलना है, कितना टाइम चाहिए, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना लंबा समय चलने वाला है, 47 ईयर्स, तब किसी ने नहीं सोचा था। तो सैतालीस साल बहुत लंबा समय है रिवाइज कोर्स का। तो ये जो दो तीन प्रश्न हैं इसके भी उत्तर इसमें बाबा ने दिए हैं। तो फिर से हम वहीं पर आते हैं, पहले तो टीचर के बारे में। तो टीचर और स्टूडेंट, टीचर का पार्ट बाबा ने कहा पूरा हो चुका है। टीचर अभी केवल 3-4 चीजों के लिए है, अभी उसकी मदद है साथ नहीं है, अभी उसका कनेक्शन है संबंध है साथ नहीं है, अभी वो देखरेख कर रहा है साथ नहीं है, अभी अगर कोई मुश्किलात है, अगर कोई प्रश्न है, तकलीफ है, डिफिकल्टी है, तो टीचर के घर जाते हैं ना स्टूडेंट एग्जामिनेशन लीव में। स्कूल तो बंद हो जाती है, 2 मास है स्कूल बंद हो गई, अभी एग्जाम है, फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ना है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ तो टीचर के घर में जाना पड़ता है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि कनेक्शन है तो, परंतु उसके पास जाना पड़ेगा, मुश्किलात है तो पूछ सकते हैं, और बाबा साक्षी होकर देखते रहता है, बाबा ऊपर से देखते रहता है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे तुम यहाँ से देखते हो, यहाँ से कहाँ से, संदली से, तो कितना अच्छा दिखाई देता है नीचे का। सोचो अगर इसके भी ऊपर से देखो तो बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो कैसे दिखाई देगा, और अनुभव सुना, और अनुभव सुनाने की ये जो परंपरा है ये तो ब्राह्मण समाज में ये जो रीत है वो शुरुआत से ही चालू है, अनुभव सुनना और सुनाना। तो तुम भी ये अनुभव कर सकते हो, तो ऊपर से देखना। और जब बाबा ऊपर से देखता है कि कोई कोई बच्चे समय व्यर्थ गवा रहे हैं, कोई कोई अलौकिकता से पढ़ रहे हैं, अलौकिकता से पढ़ना, पूरा उमंग उत्साह से पढ़ना, मेहनत करना, शक्ति लगा देना पूरी, ऐसे जब पढ़ते हैं तो भगवान बहुत खुश होता है, बाबा बहुत खुश होता है। परंतु जब देखते हैं ब्रह्मा बाबा कि कोई कोई समय गवा रहा है तो उसको क्या संकल्प आता है, इनको जरा बताऊं आकर नीचे नहीं रह सकते, ध्यान खिंचवाऊं, अभी अभी जाकर क्या करूं, ध्यान खिंचवाऊं। जैसे साकार में लाल झंडी, लाल झंडी रेड फ्लैग वार्निंग साइन होती है, दिखाते थे, वैसे अभी अभी जाऊं तरस पड़ता है। क्यों तरस पड़ता है? संबंध खींचता है। अगर कोई अनन्य बच्चा कोई गड़बड़ कर रहा है, गलती कर रहा है, अभी तक बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा था पर अचानक पता नहीं इच्छा ही कम हो गई पुरुषार्थ करने की, इसको उसको देखे या और कोई कारण से, ऐसा जब नजारा बाबा को ऊपर से दिखता है तो उसको भी लगता है कि जाकर इनको ध्यान खिंचवाऊं, तरस पड़ता है, संबंध खींचता है, परंतु साकार का पाठ पूरा हुआ। इसलिए अभी क्या करते हैं, केवल सकाश देते हैं, परंतु अव्यक्त रस, अव्यक्त मदद बहुत थोड़े ही ले पाते हैं। अव्यक्त रस और अव्यक्त मदद भी वही ले सकते हैं जो अव्यक्त स्थिति में स्थित है, अव्यक्त बाप दादा को भी वही देख सकते हैं जो स्वयं अव्यक्त है, अव्यक्त बाप दादा का भी अनुभव उन्हीं को हो सकता है जो स्वयं अव्यक्त स्थिति में दीर्घकाल चिरकाल तक रहते हैं। जो अव्यक्त में है ही नहीं उनको ये अनुभव हो ही नहीं सकता है। गए यहां से नीचे, मिले बाबा से और आ गए खाली हाथ, कोई अनुभव नहीं। कहने के लिए कह देंगे कि बहुत अच्छा लगा, पर अनुभव आंतरिक स्थिति है, अंदर से यह महसूस था कि हम तृप्त हो गए, भर गए, बहुत कुछ पा लिया। और जो पाया है उसे वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि जो पाया है वह भी अव्यक्त है, और अव्यक्त है इसीलिए बहुत शक्तिशाली है, और शक्तिशाली है इसके लिए उससे ही जीवन में, विचारों में, संकल्पों में, वृत्ति में और दृष्टि में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि जो प्राप्ति हो रही है वो बहुत ही सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि शायद उसका वर्णन भी नहीं किया जाए। भरते हुए किसी ने ना देखा पर झोली भर जाती है, गीत है, अदृश्य का खेल है सारा ये। तो फिर बाबा सदगुरु के पाठ नहीं, टीचर के पाठ के बारे में जो प्रश्न पूछे ने बच्चों ने कि भाषा क्यों बदली, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो बाबा ने कहा कि जो टीचर का जो पाठ था, जो कोर्स था पढ़ाई का, वो बस उसी द्वारा पूरा हुआ, अब बाबा पढ़ाने नहीं आते, और उसी तन द्वारा वो पाठ था, और किसी तन द्वारा वो पाठ हो नहीं सकता, इसके लिए खाली अभी मिलने का पाठ बस। वो तो साकार अशरीरी कर्मातीत होकर एक सेकंड में उड़ गया। अभी तुम्हारा काम है ये जो रिवाइज कोर्स है उसमें चेक करो कि हम रिवाइज कोर्स कहां तक चलाना है, कितना टाइम और चाहिए, और उसमें स्वयं को, जैसे आज के वरदान में सृष्टि के कयामत से पहले अपनी कमी कमजोरियों की क्या करो, कयामत करो, उज्जवल बनो, उलझन का नाम निशान समाप्त करो, तब उज्जवल बन जाएंगे, तब संपूर्ण बन जाएंगे। अभी केवल वो पार्ट रहा है, फाइनल पेपर रहा हुआ है, तो ये जो रिवाइज कोर्स है इसमें होमवर्क में क्या करना है, हमको पूरी हिम्मत से पढ़ाई पढ़नी है, पूरी शक्ति से, पूरे उमंग उत्साह से, मेहनत से और अलौकिकता से, तब कहीं जाकर वो खुश होगा। उसको तरस ना पड़े, उसको संबंध ना खींचे, उसको ना लगे कि मैं जाके इनको समझाऊं, उसको ना लगे मैं जा भी नहीं सकता हूं, अब बस दूर से सकाश देता हूं, बिना उसको ये हुए वैसे ही अव्यक्त रस और अव्यक्त मदद हम कैच कर ले, ये है होमवर्क। दूसरा पार्ट है सद्गुरु का, सद्गुरु को किस रीति में किसने फॉलो करना है, अनुकरण अनुसरण अनुगमन। जब भी फॉलो शब्द आए तीन शब्द वहां जोड़ देना, अनुकरण अनुसरण और अनुगमन। किस रीति, किस रीत में, किस बात में? तो कईयों ने हमेशा ब्राह्मणों की आदत पर एक चोट की है बहुत जबरदस्त बाबा ने। कोई भी प्रश्न पूछो तो ब्राह्मण क्या उत्तर देते हैं? याद की यात्रा। कोई भी प्रश्न पूछो सीधा उत्तर क्या होता है? बाबा ने कुठाराघात, जबरदस्त चोट की है कि याद की यात्रा कोई उत्तर नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स का उदाहरण दिया स्कूल में, स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट है उसको पूछो टोटल, टोटल तो बता देते पर जब मास्टर जी पूछते ये आया कैसे, 2+5+ जो भी है वो उत्तर कैसे आया, अब वो तो कॉपी करके देखा हुआ है तो मुन जाता है। फिर वैसे ही टोटल से टोटा हो सकता है, टोटा अर्थात घाटा नुकसान। तो याद की यात्रा साधन मात्र है, याद की यात्रा हर चीज का उत्तर नहीं देना है। इसके लिए संपूर्ण बनने का क्या उत्तर देते हैं? यहाँ पे दूसरा एक है, क्या बनना है? संपूर्ण जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, समीप। ये इस तरह के उत्तर, ये उत्तर अलग प्रकार के उत्तर है। बाबा ने कहा ये मात्र एक साधन है, इसके लिए सद्गुरु की जो शिक्षाएं है वो किस लिए है? वो एक खुराक है बाबा ने कहा। जैसे फिर से उदाहरण मेडिकल का, कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उसको टॉनिक दिया जाता है, हेल्थ टॉनिक। तो तुम्हारा हेल्थ टॉनिक कौन सा है निखिलेश भाई? अशरीरीपन, निराकारी स्थिति और न्यारापन, ये तीन शब्दों का प्रयोग बाबा ने किया है, ये तुम्हारा हेल्थ टॉनिक है। तो सद्गुरु की मुख्य शिक्षा है अशरीरी, निराकार और न्यारापन, और यही साधन है विघ्नों को पार करने का भी। कितनी रहस्यपूर्ण बात है कि जीवन में जो रास्ते चलते जो विघ्न आ रहे हैं उनको क्या अशरीरी स्थिति से पार किया जा सकता है? तार्किक बुद्धि इसका विरोध करेगी, कैसे? विघ्न तो आ रहे हैं और हम अशरीरी हो जाए, विघ्नों से पार हो जाएंगे? केवल विघ्नों से पार खुद नहीं, सृष्टि पर आने वाले जो विघ्न है उनसे भी स्वयं को बचा सकते हो। स्वयं के विघ्न हटाना एक शब्द बाबा ने बोला, दूसरा स्वयं के विघ्नों को मिटाना, और सृष्टि पर पड़ने वाले जो विघ्न है उससे भी स्वयं को बचाना, ये सारा केवल इस बात से कैसे संभव है? ये चिंतन का विषय है। इसमें भी आगे चल के प्रश्न पूछा ना, ये विघ्न जो आने वाले उनको पार कैसे करेंगे? तो सबने कहा सहन शक्ति से। बाबा ने कहा सहन शक्ति से भी पहले क्या, परखना और निर्णय करना, और वो दोनों भी कैसे आएगी? फिर वो आएगी अशरीरी, उसमें भी जो उत्तर दिए फिर से वही उत्तर दिया, याद की यात्रा। जहां पर भी प्रश्न बाबा पूछते हैं, कोई भी प्रश्न, ये करने के लिए क्या चाहिए? याद की यात्रा। कोई भी प्रश्न का उत्तर जो सेंटरों में देखे ना, मुरली बहने रिवाइज कराती है ना, तो इसने भी बोल दिया, उसने भी बोल दिया, अब हमारा पॉइंट किसी और ने बोल दिया, हरे को एक ही पॉइंट बोलना होता है, बड़ी मुश्किल से पकड़ के रखते एक पॉइंट, जैसे किसी ने गया तो खतरा उमड़ आता है, फिर एक ही पॉइंट बजता है कि आत्मा समझ बाप को याद करो। हाँ, ये आंसर सब देते हैं। तो बाबा ने यहाँ पे फिर वही आंसर दिया, दूसरा फिर एक आंसर दिया, विचार सागर मंथन, इसको भी बाबा ने रिजेक्ट कर दिया। नो, विघ्नों को पार करने के लिए विचार सागर मंथन से भी काम नहीं चलेगा। चिंतन का एक विषय है ये, विचार सागर मंथन के ऊपर ही विचार सागर मंथन करने का एक विषय है। विचार सागर मंथन का विचार सागर मंथन, विचार सागर मंथन से क्या नुकसान है, इसके ऊपर आज दिन में चिंतन करना। हमने हमेशा चिंतन क्या किया है, विचार सागर मंथन से फायदे क्या है? विचार सागर मंथन से नुकसान भी है कुछ? बाबा ने जैसे आज ही कहा ना, उसी मुरली में कहा कि सागर में डूब तो नहीं जाओगे, कोई लहर आके ले तो नहीं जाएगी, क्योंकि विचार सागर मंथन तो करना है। यहाँ बात चल रही है विघ्नों को पार कैसे किया जाए, और उत्तर में बच्चों ने क्या कहा, पहले याद की यात्रा रिजेक्ट, दूसरा कहा विचार सागर मंथन, वो भी रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि किस बात का विचार सागर मंथन कर रहे है? अगर कोई विकारों के अधीन है और वो सोचे अभी इस विकार से मुझे मुक्त होना है, चलो मैं इसका चिंतन करता हूँ अच्छे से एकांत में, वो चिंतन करते करते ही उसमें डूब जाता है। किसी के सामने समस्या है, वो सोचता है मुझे इस समस्या से मुक्त होना है, और वो समस्या से मुक्त होते होते उसका चिंतन करते करते उसमें डूब जाता है। कोई लहर आ जाती है, इसके लिए जरूरी है कि चिंतन भी किसका कर रहे हैं। क्रोध से कोई है, काम विकार से कोई ग्रसित है, काम विकार का चिंतन करते करते ही फिर से काम में डूब जाते हैं। कुछ ऐसा करने पड़ेंगे। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि विचार सागर मंथन भी किसका कर रहे हैं। किसी का भी विचार सागर कि कोई भी किताब ले ली और उसको पकड़ के बाहर की, अगर हम कोई किताब लेते हैं, कोई अच्छी किताब है, सक्सेस हमने ली, चलो इसका विचार सागर, उसमें कुछ ऐसा वैसा उदाहरण आ गया और उसकी गहराई में चले गए, तो ये भी गया और वो भी गया। इसके लिए महत्वपूर्ण है विचार सागर मंथन भी किसका। पानी का नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। कुछ दिन पहले था ना, पानी का मंथन भी कुछ नहीं निकलेगा, ज्ञान का मंथन। तो विघ्नों को पार करने के लिए भी ये तीन चीजें चाहिए। कौन सी? अशरीरीपन और निराकार स्थिति, ये तो बुद्धि तक है। न्यारापन किस में? कर्म में न्यारापन। वो कैसे आ रहा, उसके ऊपर आज फिर चिंतन करना कि हम कर्म तो करें परंतु कर्म हमें प्रभावित ना करे, कर्म से अनटच्ड, अप्रभावित, लिप्त ना हो, कोई भी कर्म से लिप्त ना, कमलवत। कर्म किया, पूरा हुआ, कोई चिंतन नहीं। ड्यूटी करने गए, ड्यूटी की, उसके बाद में कोई चिंतन नहीं। यहाँ होता क्या है, ड्यूटी की, बहुत झगड़े, आंतरिक अंतर कलह, स्वभाव संस्कारों में टक्कर, फिर शाम को जैसे ही योग में बैठते हैं, सारा के सारा वही दिखाई देता है। अगर वो व्यक्ति सामने आके बैठे तो फिर बात ही मत पूछो, हमारे ही सामने आके योग करने बैठ जाए तो फिर तो मुश्किल ही है। और योग कराने अगर बैठे तो फिर बात ही मत पूछो, अब जोट के चले जाते हैं। तो इसके लिए जैसे एक भाई था, उसने किसी भाई को 5,000 रुपए दिए। अभी दोनों ज्ञानी है, सेंटर की बात है, और जिसको दिए वो भूल गया और मिल रोज रहे हैं, 2-3 मास हुए और वो योग में जैसे बैठते था भाई सामने आके बैठता था, बस 5,000 ही दिखते थे। बाबा उधर, ये सामने आके, उसको याद ही नहीं है, अब क्या करे, अभी बोल भी नहीं सकते कि भाई दो। सूरज भाई ने अनुभव सुनाया था, वो भाई जब मधुबन आया तो उसने उसे सकाश दिए, भाई ये पैसे तुम्हारे ही थे, भूल गया, भूल जाता हूँ मैं अभी तुम्हारे, किसी जन्म में मैंने तुमसे लिए थे। तो इस तरह का प्रयोग किया उसने कि भाई अभी बहुत कितने मास तक, 5,000 साल ने पागल कर दिया है, 5,000 रुपयों ने। तो उसने ये संकल्प किया और जब घर पहुंचा तो वो भाई का कह रहा है, पैसे लेके आ गया, अरे मैं कब से तुमको फोन लगा रहा हूं, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था, वो भट्टी में आया था, फोन बंद था, तो ये लो 5,000। जैसे प्रयोग किया, माल अंदर आ गया वापस। तो ये भी सूक्ष्म बात है। तो बाबा ने निर्णय करना, परखना, ये अगर है तो हार नहीं होगी, जिस हार कभी हो नहीं सकती अगर ये शक्ति तेज है। तो दो चीजों के लिए शक्ति चाहिए, निर्णय करना, परखना और निर्णय करना, एक तो विघ्नों को पार करने के लिए, और दूसरा उधर लास्ट में फिर बोला है कि जो हम अपने आप को भेंट करें, साकार के जो कर्म है और साकार की जो स्थिति है उससे भेंट करने के लिए ये निर्णय शक्ति चाहिए, तब रिवाइज कोर्स पूरा होगा और हम जा सकेंगे। तो मुरली का टाइम हो गया है, मुरली का जो सार है वो है, टीचर का पाठ समाप्त हो गया है, हमको घर पे ही बैठ के पढ़ाई करनी है, पूरा उमंग उत्साह से, शक्ति से, अलौकिकपन से ये पढ़ाई को पूरा करना है। एक सदगुरु का पाठ है, साथ ले चलना, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, सृष्टि की कयामत से पहले कमी कमजोरियों की कयामत करना है ये। तीसरा सदगुरु की जो शिक्षाएं है, निराकारी स्थिति और अशरीरी स्थिति, इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास। सारा ज्ञान, सारी 69 की अव्यक्त मुरली एक बिंदु पर आकर रुकती है, एक सेकंड में शरीर से निकल जाना, अशरीरी होना, बस यही अभ्यास करना है। मैं अलग, शरीर अलग, मैं अलग, शरीर अलग, मैं अशरीरी आत्मा, एक दूसरों को टिप्स देते रहना, कौन सी अशरीरी कैसे बने, कि भाई ये है टिप, अशरीरी इस तरह बना जाता है, अशरीरी कैसे बनना, बस इसी की चर्चा होती रहे, कि शरीर की चर्चा ना हो, अशरीरीपन का चर्चा हो, अशरीरी और निराकार, बस यही है, तीन चार अवस्था है। एक है अशरीरी, शरीर में रहते आत्मा महसूस करे कि मैं शरीर में नहीं हूँ, यह है अशरीरी अवस्था। दूसरी अवस्था है अव्यक्त स्थिति, व्यक्त में रहते हुए यह महसूस करे कि मैं अव्यक्त हूँ, व्यक्त भाव से परे। तीसरी अवस्था है फरिश्ता अवस्था, फरिश्ता अवस्था अर्थात मैं आत्मा लाइट के कारण में हूँ, अंतवाहक शरीर में हूँ, ये अवस्था अशरीरी। फिर बाबा ने जो कहा है निराकारी, निराकारी अर्थात परम धाम में जो अवस्था है वो निराकारी है या बीज रूप है या बिंदी रूप है या ज्वालामुखी योग है। ये अलग अलग प्रकार की तीन चार अवस्था है, अव्यक्त स्थिति, निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति। इन सभी स्थितियों का अनुभव करना है ताकि इस देह से ऊपर रहे, और ये अगर हुआ तो विघ्न नहीं आएंगे। ये विधि है विघ्नों को पार करने की, बहुत ही सूक्ष्म फिलॉसफी है कि अशरीरी होते ही क्या होते हैं, आत्मा अपने दिव्य गुणों में स्थित हो जाती है और वैसे ही वाइब्रेशन सृष्टि में फैलते हैं। हमारे विचार प्रकृति में जाएंगे, प्रकृति और हमारे विचारों का रिएक्शन होगा और नई परिस्थितियां क्रिएट होगी जो हमारे अनुकूल होगी, विघ्न स्वतः ही समाप्त होंगे क्योंकि आत्मा में संपूर्ण सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, निगेटिविटी उसमें नहीं है। परिस्थिति निगेटिव है, हम सकारात्मक है, अशरीरी जैसे हो गए वाइब्रेशंस निकलेंगे, परिस्थिति को समाप्त करेंगे। परिस्थिति जो विघ्न है या किसी भी रूप का विघ्न हो, फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा, कोई भी परिस्थिति, प्राकृतिक आपदा से लेके कुछ भी हो, हमारे श्रेष्ठ संघ, क्योंकि कमजोरी या विघ्न क्या है, हमारे कमजोर मन की रचना है, हमारी ही रचना है, इसके लिए यहीं से उसको हटाया जा सकता है। इसका उत्तर किसी से पूछकर, किसी से चर्चा कर ये जो है ना, इससे इतना नहीं मिल सकता है। सारे उत्तर यहाँ है सबकॉन्शियस में, यहीं से सब मिलेगा बाहर। और बाबा ने लास्ट में कहा अब टाइम पूरा हुआ है। अच्छा, समयातीत, जो समय से परे रहने वाला है, कालातीत जो है वो क्या कह रहा है यहाँ आके, अच्छा अब टाइम पूरा हुआ, मुरली को रोकते हैं, इधर भी टाइम अब पूरा हुआ है। ओम शांति। कल कुमुद बहन का, उसके बाद